Hare Krishna.
Hare Krishna.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari. Jana Vallabha Girivar Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivar Dhari. Jana Vallabha Girivar Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda hari yamuna tiram vanachari
Krishna, Krishna, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Jaya Radha Kunj Bihari, Radha Kunj Bihari Radhe. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Ashtotar Sat, His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya, Shri Shri Radha Kunja Bihari Ji Ki Jaya, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jaya, Shri Gauranga Mahaprabhu Ki Jaya, Nitai Gaur Premanande, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jaya, Shri Shri Guru Gauranga Ki Jaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunnilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सब समय निकालकर यहाँ पर शाम के समय आए हैं, इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि श्रोता नहीं हो तो वक्ता क्या करेगा। तो श्रोताओं के कारण ही तो सत्संग की शोभा बढ़ती है। जहाँ श्रोतागण उत्साही होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, आतुर होते हैं श्रवण करने के लिए, तो साधारण वक्ता को भी दो शब्द कुछ कहने के लिए प्रेरणा मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति सिखलाने के लिए और वृंदावन के भाव में कृष्ण भक्ति का आस्वादन करने के लिए प्रकट हुए थे। इसलिए जब भी वो ऐसी कोई बात सुनते जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध था तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए बारंबार जितने भी वो चर्चाएं करते हैं भक्तों के साथ, अन्यों के साथ, उसमें अवश्य वो भक्ति के सिद्धांत की स्थापना करते हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाश आनंद सरस्वती जैसे बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान जब उनसे वाद करने बैठे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के आधार पर, वेदांत के आधार पर ये सिद्ध करके दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ गति है और यही सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी है। प्रकाशानंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य वैसे तो निराकारवादी थे, मायावादी थे। उनका विचार ऐसे था कि परम सत्य निराकार है और हम सब वास्तव में भगवान हैं, भगवान का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। जो परम सत्य निराकार है वो प्रकट हो जाते हैं साकार रूप में, और ये रूप इस भौतिक जगत के तीन गुणों से बना हुआ होता है। तो यहाँ के रूप, भगवान के जो अवतार हैं, वो भी माया ही हैं, माया के विविध रूपों का प्रदर्शन है, इसलिए ऐसे दर्शन को मायावाद कहते हैं। कभी कभी भक्त ऐसा सोचते हैं मायावाद का मतलब है कि कोई माया में है तो मायावादी है। एक बार कोई हमें बता रहे थे वो भक्त मायावादी है। अरे कैसे भक्त और मायावादी कैसे हो सकता है? कहने लगे नहीं नहीं वो तो बहुत माया में पड़ गया है, तो वो मायावादी नहीं है। मायावादी मतलब जो सोचता है कि भगवान का रूप भी माया का रूप है वो मायावादी कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश आनंद सरस्वती और उनके हजारों जो शिष्य थे उन सबको वैष्णव बनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य जो नीलाचल में सबसे बड़े पंडित माने जाते थे, राजा प्रताप रुद्र के गुरु थे, उनको भी उन्होंने कृष्ण भक्त बनाया। यहां तक कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्ति के अलावा किसी और चीज का स्मरण भी कोई दिलाता तो उनको अच्छा नहीं लगता। एक बार भक्ति सिद्धांत भक्ति के बारे में चर्चा करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो ये श्लोक का उच्चारण किया। तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेश दाय भाग। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है श्रीमद् भागवत से। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके शरण में आता है और आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है धैर्य रख के, और कृपा की प्रतीक्षा करते करते जान लेता है कि जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उसी के पूर्वकृत पापों के कारण आ रहे हैं, इसमें और किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए और हरगिज़ भगवान को दोषी ठहराना ही नहीं चाहिए। और ऐसे व्यक्ति आपकी कृपा की प्रतीक्षा जब करता है अपने हृदय से, अपने वाणी से और अपने कार्यों से, वो आपको नमस्कार करता है, आपकी सेवा करता है, तो ऐसे व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब ये श्लोक कहा तो उन्होंने मुक्ति पद बदल के भक्ति पद डाल दिया, भक्ति पदेश दाय भाग। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुन लिया, तुरंत पकड़ लिया कि अरे भट्टाचार्य, आपने श्रीमद् भागवत का श्लोक बदला क्यों? श्लोक है मुक्ति पदे, तो आपने भक्ति पद क्यों कह दिया? तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि वास्तव में मुक्ति शब्द का अभिप्राय साधारण लोगों के मन में यह होता है कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को नष्ट करना, यह भक्ति के सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए यह मुक्ति शब्द से ही मैं घृणा करता हूं, इसलिए मैंने भक्ति पदे कह दिया। तो चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए कि कहां पहले के मायावादी प्रगाढ़ विद्वान जो महाप्रभु को 7 दिन लगातार वेदांत सिखा रहे थे और वो आज मुक्ति शब्द से भी घृणा करते हैं और श्रीमद् भागवत के श्लोक में मुक्ति को बदल के भक्ति डालना चाहते हैं। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि कितना परिवर्तन है, लेकिन फिर भी वो कहने लगे कि भट्टाचार्य देखो, शास्त्रों की बातें बदलनी नहीं चाहिए। शास्त्र में यदि मुक्ति लिखा है तो मुक्ति ही सही है, हमें शास्त्रों की बातों को बदल के मुक्ति पद से भक्ति पद नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जहां तक मैं समझता हूं, मुक्ति पद ये उन भगवान को संबोधित करता है जिनके चरण कमलों में समस्त प्रकार के मुक्तियां निवास करती हैं और आश्रय लेती हैं, या अन्यथा जिसके पद का आश्रय लेके मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है, ये है मुक्ति पद। तो ये भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो यदि ये कहा जाए कि ये व्यक्ति मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो कृष्ण को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा, कृष्ण के चरण कमलों का शरण वो प्राप्त कर लेगा और अंततः उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तो ये अर्थ मैं समझ लेता हूं मुक्ति पद से, तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, फिर भी ये मुक्ति शब्द कहने से मन में एक विचित्र प्रकार का विचार आता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। भक्ति शब्द कितना मधुर है, भक्ति कहने से हृदय को बहुत शांति मिलती है, हृदय को आनंद मिलता है। तो महाप्रभु बड़े आनंद से मुस्कुराए। तो बारंबार ऐसे महाप्रभु भक्ति के सिद्धांत को जोर दिया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था मुकुंद। मुकुंद एक शुद्ध भक्त थे और उनकी विशेषता ये थी कि उनका कीर्तन, उनका भजन, उनका गान इतना मधुर हुआ करता था कि सारे वैष्णव बस सुनते रह जाते, सबका हृदय पिघल जाता। ऐसे कोई वैष्णव नहीं होता जो मुकुंद का कीर्तन सुन के रो नहीं पड़ता। भक्ति भाव से हृदय को छूने वाला कीर्तन और भजन उनका हुआ करता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे भक्ति की लीला प्रकट करने के पहले, तो एक बार वो ऐसे अपने छात्रों को लेकर किताबों को अपने कर कमलों में पकड़े हुए बस यूं शेर की तरह नवद्वीप के सड़कों में इधर उधर घूम रहे थे। अचानक सामने उन्होंने मुकुंद को देखा। वैसे मुकुंद तो निमाई को देखकर दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे क्योंकि वाद और तर्क में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस बार क्या करें, सामने आ गए तो भाग नहीं पाए। तो निमाई पंडित ने हाथ पकड़ लिया निमाई मुकुंद का कि मुकुंद मेरे साथ वाद करो। तो मुकुंद ने सोचा आज इसको सबक सिखानी चाहिए, ये लड़का बहुत सबको जाके चुनौती देता है वाद के लिए, ये तो आखिर व्याकरण का छात्र है, मैं अलंकार वगैरह में चर्चा करूंगा और इसको परास्त करूंगा आज कम से कम। तो पहले व्याकरण की चर्चा हुई, लेकिन हर बार की तरह निमाई पंडित ने तो ऐसे हरा दिया मुकुंद को कि मुकुंद तो निरुत्तर रह गए। फिर कहने लगे कोई बात नहीं, व्याकरण की बात छोड़ो, अब अलंकार की बात करते हैं। तो जो भी बात मुकुंद कहते उसका खंडन चैतन्य महाप्रभु कर डालते, और करते करते यहां तक बात पहुंच गई कि फिर से मुकुंद अवाक रह गए, कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। तो मुकुंद ने केवल निमाई पंडित के चरणों से धूल ली, अपने सर पे ली, और निमाई ने कहा कोई बात नहीं मुकुंद, आज अपने घर में जाना, अच्छी तरह से किताब पढ़ के कल फिर से आना, फिर से हम चर्चा करेंगे। बड़े मीठे ढंग से घर भेज दिया मुकुंद को। मुकुंद खड़ा रह गया वहां पे, निमाई आगे चले गए, और मुकुंद सोच रहे थे कि कैसे साथी है कि किसी मनुष्य को इतना ज्ञान हो, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो ये नहीं जानता है, ये अद्भुत है। यदि ये निमाई वैष्णव हो जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसे सोचते सोचते मुकुंद आगे चले गए। लेकिन एक बार जैसे हम कल बता रहे थे कि निमाई पंडित ने मुकुंद से कह दिया था कि मुकुंद एक दिन मैं ऐसे वैष्णव बनूंगा कि तुम भी देखते रह जाओगे, और अंततः श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी वैष्णव लीला शुरू कर ही डाली। सारे वैष्णवों की आनंद की सीमा नहीं रही, दिन भर रात भर कीर्तन, और सारे नवद्वीप के वैष्णव बस भक्ति के आनंद के समुद्र में झूमते रहते, तैरते रहते, और ऐसे उनके दिन और रात बीतते जाते, वैष्णवों की संख्या बढ़ती गई। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सात प्रहरिया लीला की, महाप्रकाश लीला। ये हर बार ऐसे महाप्रभु नहीं करते थे, विरला ही करते थे जब वो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन करते थे। तो इस बार अपने सारे भक्तों को बुलाकर उनसे कहने लगे कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो कहो, सारे भक्तों की प्रशंसा करने के बाद उनको पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, आज मैं वो इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तो ऐसे प्रशंसा करते करते, भक्तों की इच्छा पूर्ण करते करते, सारे भक्त जो थे वहां उनके बारे में तो चर्चा कर ली महाप्रभु ने, लेकिन मुकुंद के बुलाए नहीं सामने। मुकुंद बेचारे पीछे पीछे खड़े थे और शर्मा रहे थे आने के लिए सामने। मुकुंद के हृदय में ये बात थी कि जब तक महाप्रभु मुझे सामने बुलाएंगे नहीं, मैं सामने आऊंगा नहीं। तो फिर श्रीवास ठाकुर ने जाके महाप्रभु से कहा कि प्रभु, आपने मुकुंद को नहीं बुलाया, हम सबको सामने बुलाया, हम सबकी प्रशंसा की, हम सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर डाली आपने, लेकिन मुकुंद को भी बुलाइए। चैतन्य महाप्रभु ने रोष की लीला प्रकट की, क्रोध की, उस दुष्ट मुकुंद का नाम भी नहीं लेना मेरे सामने, दिखने में एक है करता कुछ और है, आप सब नहीं जानते हो कि वो मिथ्याचारी है और नम्रता का ढोंग करता है। एक बार ऐसे अपने आप को नम्र रूप से पेश करता है कि कोई व्यक्ति सोचे कि इसके जैसा कोई नम्र है ही नहीं, और दूसरे क्षण ऐसे प्रहार करता है, ऐसे आक्रमण करता है, ऐसे अपराध करता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। मान लो कि कभी अपने दांतों में तृण धारण करके वो दंडवत प्रणाम करता है मुझे, और दूसरे क्षण लोहे की छड़ी लेकर मुझको, मेरे ऊपर प्रहार करता है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, हमारा मत तो ऐसे नहीं है, मुकुंद का व्यवहार ऐसे तो हमने कभी नहीं देखा, मुकुंद तो आपका शुद्ध भक्त है। तो फिर वो कहने लगे, नहीं नहीं आप नहीं जानते, मुकुंद जो है वो जाता है छुप छुप के, योग वशिष्ठ की प्रवचन सुनता है, जब वैष्णवों के साथ में होता है तो भक्ति की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है, और फिर जब वहां निराकारवादियों के पास, मायावादियों के पास जाता है, जहां योग वशिष्ठ की चर्चा चल रही होती है और ये बताया जाता है कि परम सत्य निराकार है, तो वहां भी हाँ में हाँ मिला के चले आता है। कभी और किसी संप्रदाय के वचनों को सुनने जाता है और वहां उनके यहां भी हाँ में हाँ मिला के आता है। तो जहां तक मेरा मत है, जो भी ऐसे सिद्धांत को सुनता है या व्यक्त करता है या स्वीकार करता है कि परम सत्य निराकार है, और जो भी भक्ति के श्रेष्ठता के विरुद्ध कुछ भी कहता है, तो समझ लेना कि श्रीवास वो मेरे शरीर पर ही लोहे के छड़ी से आक्रमण कर रहा है। तो उस समय सारे लोग रह गए, सुनते सुनते रह गए, सभी लोग अवाक हो गए। अब मुकुंद भी सुन रहे थे पीछे से छुपके। तो मुकुंद का इतिहास ये था कि वैष्णव बनने के पहले उनके एक कोई मायावादी गुरु थे, और उनसे उन्होंने कुछ ऐसे सुना था। तो मुकुंद जान गए कि महाप्रभु तो अच्छी तरह से मेरे इतिहास को जान गए कि मैंने क्या किया था नहीं किया था। तो श्रीवास ठाकुर उनके पास गए तो मुकुंद ने कहा कि ठीक है, महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा नहीं करना चाह रहे हैं, तो कृपया ये तो पूछिए महाप्रभु से कि मैं उनका दर्शन कब कर पाऊंगा। और ऐसे भाव विभोर होकर मुकुंद बेचारे गिर पड़े। तो श्रीवास ठाकुर गए महाप्रभु के पास कि मुकुंद पूछ रहे हैं कि दर्शन कब होगा आपका। तो चैतन्य महाप्रभु भी तक रोष की लीला में थे, उन्होंने कहा उस दुष्ट मुकुंद से कहना कि 1 करोड़ जन्म बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। तो जब मुकुंद ने सुना तो छलांग मार के कूद कूद के बड़े भाव विभोर हो के वो चिल्लाने लगे, 1 करोड़ जन्म बाद, 1 करोड़ जन्म बाद दर्शन अवश्य होगा, अवश्य होगा। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप समझ गए हैं ना किस लिए कूद रहे थे वो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कम से कम 1 करोड़ जन्म के बाद निश्चित दर्शन तो होगा ना। महाप्रभु ने कहा है 1 जन्म बाद, लेकिन उसके बाद होगा तो सही दर्शन, तो मेरा जीवन सफल हो गया, केवल 1 करोड़ जन्म तक मुझे रुकना है। तो ये श्रद्धा थी मुकुंद की। वास्तव में ये समय क्या चीज होता है, यूं चले जाता है। अक्सर हम बातों बातें में कहते हैं ना, अरे इनको 10 साल बाद इस बच्चे को देखा था, 10 अभी पहले बच्चा था, बड़ा हो गया होगा ही ना, 10 साल बीत गए तो बड़ा होगा ही। हम कहते हैं ऐसे, समय ऐसे बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे एक ऋषि थे जिनका नाम था लोमस ऋषि, तो उनको एक वरदान मिला था कि उनकी जीवन की अवधि इतनी लंबी होगी जितने उनके शरीर में लोम हैं, और हर एक लोम, जितने लोम हैं उतने ब्रह्मा जी के दिन वो रहेंगे। कल्पना कीजिए कितनी लंबी आयु होगी उनकी। तो वो वन में रह रहे थे और एक बार इंद्रदेव वहां से जा रहे थे तो उनके पास आए प्रणाम करने, वहां पर उतरे अपने विमान से। तो लोमस ऋषि से उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई कुटिया नहीं है, कोई कुटीर, भजन कुटीर नहीं है, क्या हम आपके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, आपके लिए भजन कुटीर बनाए, कुछ करें, आपने क्यों नहीं बनाया है कुटीर अपने आप के लिए, आप यूं ही जंगल में निवास कर रहे हैं। तो लोमस ऋषि ने कहा, अरे घर बनाने में कितना समय जाएगा, अरे उतना समय मेरा भजन नष्ट हो जाएगा, और मनुष्य जीवन तो इतने कम समय के लिए है। अब लोमस ऋषि की आयु तो कम नहीं थी, फिर भी लोमस ऋषि सोच रहे हैं कि मनुष्य जीवन इतने कम समय के लिए है तो मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके घर बनाने के पीछे क्यों लगूं मैं। तो इंद्रदेव सोच लगे, अभी मेरी जीवन की अवधि तो इनसे तो बहुत कम है, और मैं तो नंदन कानन में इतना रमण करता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, सोच लगे कि मुझे हाँ वास्तव में और गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए। तो लोमस ऋषि को लगा कि मेरे जीवन की अवधि इतनी लंबी है, प्राय ब्रह्मा जी के समान है, फिर भी समय यूं चले जाएगा। उसी प्रकार से मुकुंद भी सोच रहे थे, यदि हमें भगवान का दर्शन मिले तो उसमें 1 करोड़ जन्म क्या चीज है, कुछ भी नहीं। यदि किसी व्यक्ति को बताया जाए, किसी व्यापारी को बताया जाए कि हम आपको 10 करोड़ रुपए देंगे लेकिन 1 साल बाद में देंगे, तो व्यापारी खुश नहीं होगा। हाँ, वो चाहता कि अभी आज का आज दे दो, लेकिन वो कहेगा आज नहीं 1 साल बाद देंगे, तो कितना खुश हो जाएगा व्यक्ति। तो सोचेगा 1 साल रुकने में कौन सी बड़ी बात है, जब अंत में इतना कुछ मुझे मिलने वाला है तो 1 साल रुकना कोई बड़ी बात नहीं है, जब अंत में 10 करोड़ रुपए मुझे मिलने वाले हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मुकुंद सोच रहे थे, अंत में मुझे मिलना क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय मिलना है, उनका दर्शन मिलना है। तो 10 करोड़ जन्म रुकना, 1 करोड़ जन्म रुकना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो सारे भक्त रोने लग गए, चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुकुंद जल्दी से इधर आओ, तुम्हारे सारे अपराधों को मैंने क्षमा कर डाला है, अब आशीर्वाद स्वीकार करो, चले आओ। मुकुंद चले आए और चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया मुकुंद को और कहा कि मुकुंद, तुम्हारे हृदय में मेरे वचनों के प्रति इतनी तीव्र श्रद्धा है, इसके कारण तुमने मेरा हृदय जीत लिया है, तुम में वास्तव में भक्ति में बहुत तीव्र विश्वास है, मैं जानता हूं तुम तो मेरे पार्षद हो, मेरे नित्य पार्षद हो, जहां पे तुम गाओगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका हृदय नहीं पिघलेगा तुम्हारे कीर्तन और भजन को सुन के। तुम मेरे हो, इसलिए मैं कभी कभी तुम्हें ऐसे डांट देता हूं, लेकिन हो तुम मेरे नित्य पार्षद। वास्तव में मुकुंद एक बहुत सरल सीधे साधे भोले भाले भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को निमित्त बनाकर हम सबको एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देना चाहते थे। और वो क्या है कि इधर उधर जाके आध्यात्मिक बातें प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। कई बार भक्तों को लगता है कि वहां भी वो भक्ति की बात कर रहे हैं, वहां भी भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जब तक वो सही गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये भक्ति का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है। यदि कोई ऊपर ऊपर से भी कहे मैं भक्ति कर रहा हूं, परंतु गहराई में जाने से, परीक्षा करने से पता चलेगा कि अंततः इसके जीवन का उद्देश्य है निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना। इसलिए बहुत सावधान रहना है हमें। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे चेतावनी तो दी ही थी, मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश, क्योंकि हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है जब हम सुनते हैं कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान एक व्यक्ति ही नहीं है, तो फिर हमारी भक्ति कैसे रह सकती है, वो तो नष्ट हो ही जाएगी। तो फिर मुकुंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा मुझ पर की है, मैं तो एक तुच्छ और दुष्ट व्यक्ति हूं, मेरे में कोई अच्छे गुण नहीं है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, फिर भी आपने आपका दर्शन मुझे प्रदान किया है। अब देखिए दुर्योधन कितना दुष्ट था, असुर था, उसने श्री कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन क्या फायदा हुआ दुर्योधन को? कोई फायदा नहीं हुआ आपका दर्शन करने से, बल्कि उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई, उसने आपकी निंदा करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, आपने जब विश्वरूप का दर्शन कराया दुर्योधन को, तो दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा कि आक्रमण करो, क्योंकि दुर्योधन के हृदय में कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए आपका दर्शन करने के बाद भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। उधर देखिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष ने आपका सुंदर वराह रूप का दर्शन किया, लेकिन क्या कोई भक्ति थी उसके हृदय में? नहीं थी। दर्शन करने पर भी क्या लाभ हुआ? प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि वराहदेव ने वध ही कर दिया उसका, और हिरण्यकश्यप ने नरसिंहदेव का रूप स्वीकार दर्शन किया, और वही बात हुई, शरीर नष्ट हो गया। जब श्री कृष्ण, जब आप ही श्री कृष्ण के रूप में रुक्मिणी देवी को ले जाने के लिए कौंडिन्यपुर आए, तो रुक्मी जो रुक्मिणी के भाई थे, उनके अनेक साथी थे जो रुक्मिणी से विवाह करना चाहते थे, और जब उन्होंने देखा कि आप रुक्मिणी को लेकर चले जा रहे हैं, तो आपसे युद्ध करने के लिए आ बैठे, और आपने उन सबको परास्त कर दिया। आपका साक्षात दर्शन उन्होंने किया, लेकिन क्या फायदा हुआ? उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, बल्कि क्योंकि उनके हृदय में कोई भक्ति नहीं थी। तो ये भी मेरी अवस्था है प्रभु, आपका दर्शन तो मुझे मिल चुका है, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है। जब आप मथुरा गए थे, तो कुब्जा ने आपकी सेवा की, सुदामा नाम के मालाकार ने आपकी सेवा की, परंतु कंस, उसने भी दर्शन किया आपका, लेकिन वो दुष्ट था, उसके हृदय में भक्ति नहीं थी, इसलिए कोई लाभ नहीं हुआ उसे, उसका भी वध आपको करना पड़ा। तो मेरी भी यही दशा है। चैतन्य महाप्रभु का हृदय और भी पिघल गया मुकुंद के इन बातों को सुनकर। फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे मुकुंद से कि नहीं नहीं मुकुंद, तुम मेरे नित्य पार्षद हो, मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, मैं यूं ही प्रेम के कारण तुम्हें कभी कभी ऐसे डांट देता हूं। जब एक धोबी था मथुरा में, मैंने उसे पूछा कि वो वस्त्र मुझे दे दो कंस के, उसने नहीं मानी तो मुझे वध करना पड़ा उनका। क्योंकि ये जो धोबी था, इसने अपने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी और इस तपस्या के बल पे वो इस योग्य हुआ था कि वो मेरा दर्शन कर पाए। यद्यपि उसने तपस्या की थी, फिर भी भक्ति हृदय में नहीं थी, इसलिए जब मैं उसके सामने आया, वो मेरा दर्शन करने के लिए योग्य हो गया, लेकिन सेवा करने के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति नहीं थी। और क्योंकि वो मेरी सेवा नहीं करना चाहता था, मेरा दर्शन भी उसके लिए व्यर्थ था, कोई लाभ नहीं हुआ। तो जहां भी भक्ति नहीं होती है, हे मुकुंद, मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। मैं समझता हूं कि जहां भी भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कुछ कहा जाता है तो मुझ पर प्रत्यक्ष वो प्रहार है, आक्रमण है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने फिर मुकुंद का आलिंगन किया, को आलिंगन किया। तो बार बार ऐसे चैतन्य महाप्रभु इस चीज पर जोर देते थे कि भक्ति के सिद्धांत की स्थापना होनी चाहिए, भगवान के व्यक्तित्व को भली भांति सभी को जानना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका एक सच्चिदानंद दिव्य शरीर है, वो केवल निराकार नहीं है। जो निराकार ब्रह्म ज्योति वह है, वो उनके शरीर का दिव्य तेज है, प्रकाश है। एक बार एक व्यक्ति था, वो कृष्ण की उपासना करता था। कृष्ण की मूर्ति उसके घर में थी और रोज कृष्ण की आरती उतारता था, लेकिन अनेक वर्ष कृष्ण की पूजा करने के बाद भी उसको कुछ धन नहीं मिला। तो वास्तव में वो अच्छी तरह से भक्ति नहीं करता था, उसके कोई सद्गुरु नहीं थे, उसको मार्गदर्शन करने वाले कोई नहीं थे, लेकिन खैर कोई संस्कार थे पूर्व जन्म के, तो वो उपासना कर रहा था श्री कृष्ण के। तो उसने कहीं से सुना, किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम कृष्ण की उपासना करोगे कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गा देवी की उपासना करो, देखो माला माल हो जाओगे। ऐसे लोग कहते ना, एक व्यक्ति कह रहा था, एक व्यक्ति हमसे प्रश्न ऐसा कहते, दुर्गा देवी की पूजा करने से व्यक्ति माला माल हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो व्यक्ति ने दुर्गा देवी की उपासना करना शुरू कर दिया और धन तो आते गया धीरे धीरे से, लेकिन जब वो अगरबत्ती रखते थे या धूप रखते थे दुर्गा देवी की तस्वीर के सामने, तो जो धुआं है वो चले जाता था कृष्ण की ओर, कृष्ण की मूर्ति की ओर। तो उसने ऐसे वैसे धूप को घुमाया, अगरबत्ती को ऐसे रखा वैसे रखा, लेकिन जो भी करे धुआं जाता वैसे कृष्ण की ओर, कुछ भी करे। तो बहुत कोशिश करने के बाद इस व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आया, मैं यहां दुर्गा देवी को अर्पण कर रहा हूं, धुआं वहां क्यों जा रहा है। तो उसने अंत में सोचा एक ही उपाय है, कृष्ण की मूर्ति के पास गए और उन कृष्ण की मूर्ति के नसिकाओं में रुई डाल, कपास डाल दिया, ताकि गंध वहां जाए तो वो सूंघ नहीं पाए। तो उस दिन रात को जब वो सोने गए तो श्री कृष्ण उनके सपने में आए, अरे वत्स, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तो बोले, मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों, मैंने तो आपकी सेवा छोड़ दी और दुर्गा देवी की सेवा करने लगा, यहां तक कि कल मैंने आपके नसिकाओं को बंद कर दिया ताकि आप इसका सुगंध, धूप का सुगंध नहीं सूंघ पाए। वो सब ठीक है बस, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम तुमने मुझे एक व्यक्ति तो माना ना। तुम सोच रहे थे कि मैं भी एक व्यक्ति हूं, मैं भी सूंघ सकता हूं और मुझ में और मेरी मूर्ति में कोई अंतर नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तो ये बात है, अक्सर जो लोग भगवान को मानते भी हैं, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है कि भगवान कौन है क्या है, बहुत मिश्रित ज्ञान होता है लोगों का, स्पष्टीकरण नहीं होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर ढंग से स्पष्ट बताया है कि भगवान कौन है, कैसे हैं, जिससे कि हम भक्ति अच्छी तरह से सही ढंग से कर सकते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के उपदेश थे। एक बार अद्वैत आचार्य, जो कि उनसे उम्र में आयु में बहुत बड़े थे, उनके पिता तुल्य थे, अद्वैत आचार्य के मन में दुख था कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूं, परंतु चैतन्य महाप्रभु मुझे कभी सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा मुझे सम्मान देते हैं, क्योंकि आयु में मैं उनसे बहुत बड़ा हूं, और वैसे मैंने दीक्षा ली थी माधवेंद्रपुरी से, जो कि चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे, लेकिन मैं चाहता हूं कब वो दिन आएगा जब चैतन्य महाप्रभु मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसे कई दिन बीत गए, महाप्रभु ने कभी ऐसे इशारा भी नहीं किया कि वो अद्वैत आचार्य को अपना सेवक मानते हैं। तो अद्वैत आचार्य सोचने लगे कि मेरा जीवन तो असफल हो जाएगा, यदि चैतन्य महाप्रभु मुझे प्रभु मानेंगे और सेवक नहीं मानेंगे तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर मतलब क्या है रहने का। तो सोचने लगे क्या किया जाए, क्या ऐसे किया जाए जिससे कि चैतन्य महाप्रभु मुझे सेवक मानेंगे। सेवक मानना है तो मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि महाप्रभु मेरे ऊपर इतने क्रोधित हो जाएंगे कि मेरे ऊपर वो प्रहार करेंगे। जब वो मुझे डांटेंगे, प्रहार करेंगे मेरे ऊपर, तब मैं समझूंगा कि उन्होंने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया है। हम सेवक को ही ऐसे डांट सकते हैं, किसी और व्यक्ति को, ऐरे गैरे व्यक्ति को तो डांट नहीं सकते हम। तो फिर अद्वैत आचार्य ने क्या किया, योग वशिष्ठ के ऊपर जाके प्रवचन देना शुरू कर दिया, जिसमें मायावाद सिद्धांत भरा हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु के कानों तक ये खबर पहुंच गई कि अद्वैत आचार्य वो मायावाद भाषण दे रहा है। तो इतना गुस्सा हुआ चैतन्य महाप्रभु को कि जिस स्थान में अद्वैत आचार्य प्रवचन दे रहे थे वहां गए मंच पे और उनकी पिटाई शुरू कर दी, मुझ पे प्रहार कर रहे हो छड़ी लेकर, ये मायावाद दर्शन के ऊपर प्रवचन दे रहे हो। और जैसे वो पिटाई कर रहे थे बेचारे अद्वैत आचार्य के, अद्वैत आचार्य तो बड़े खुशी से चिल्ला रहे थे, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है, धन्य हो गया। बाद में चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि एक षड्यंत्र था, एक युक्ति थी अद्वैत आचार्य की, फिर वो थोड़े शर्मिंदा हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जहां भी ऐसी कोई बात चैतन्य महाप्रभु सुनते थे जो भक्ति के विरुद्ध था, भगवान के व्यक्तित्व से विरुद्ध था, वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। देवानंद पंडित नाम का एक व्यक्ति था, वो बहुत विद्वान व्यक्ति था, और बचपन से ही उदासीन था। उदासीन का मतलब है कि संसार से विरक्त था, संसारी भोग से कुछ लेना देना नहीं था उसका। श्रीमद् भागवत पढ़ता था और श्रीमद् भागवत पर प्रवचन देता था, परंतु उसके कोई वैष्णव सद्गुरु नहीं होने के कारण वो वैष्णव सिद्धांतों का प्रवचन या स्पष्टीकरण नहीं करता था, वो यूं ही ऐसी कोई बातें बोल देता था। तो एक बार हुआ ये कि श्रीवास ठाकुर उनके आश्रम से होते हुए जा रहे थे, उन्होंने सुना कि अंदर से देवानंद पंडित कोई कृष्ण कथा कर रहे हैं, कालिया की बात सुनाई दी, तो श्रीवास ठाकुर तुरंत अंदर चले गए। ये उस समय की बात है जब श्री चैतन्य महाप्रभु शायद प्रकट भी नहीं हुए होंगे, अब प्रकट हुए थे तो भक्ति की लीला कम से कम प्रकट नहीं की थी। तो श्रीवास ठाकुर जाकर तुरंत वहां बैठ गए, वो तो परम वैष्णव थे, श्रीमद् भागवत का हर एक शब्द हर एक अक्षर दिव्य है, भगवान से अभिन्न है। और जब कृष्ण की लीला सुनते गए तो भाव विभोर हो गए, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे और उनकी इंद्रियां उनके वश से बाहर गई चली गईं, अश्रु धारा होने लगे, हुंकार करने लगे। तो जो शिष्य वहां बैठे थे देवानंद पंडित के, उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ा उत्पात कर रहे हैं व्यक्ति, तो उन्होंने उठाया उनको और उठाकर बाहर डाल दिया, आदर पूर्वक नहीं। तो ये निरादर हुआ, बहुत बड़ा अपराध हुआ श्रीवास ठाकुर जैसे परम भक्त के प्रति। उस समय देवानंद पंडित ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप बैठे रहे। उनका कर्तव्य था कि विरोध करना चाहिए था उनको, शिष्यों का डांटना चाहिए था कि ये परम वैष्णव है, ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, लेकिन वो चुपचाप बैठे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस महाप्रकाश लीला के दौरान श्रीवास ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे तो इस घटना को उन्होंने याद किया। वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। कहने लगे, हे श्रीवास ठाकुर, फिर आप वहां घर के बाहर बैठे, आपको पता ही नहीं था, क्योंकि आपकी बाह्य चेतना नहीं थी, आंतरिक अवस्था में आप श्री कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर हो गए थे, तो मैं आपके हृदय में प्रकट हुआ और भक्ति भाव आपका और तीव्र हो गया। बाद में आपको पता चला कि अरे मैं कहां बैठा हूं, मैं तो अंदर था, यहां कैसे आ गया, और बड़े दुखी होकर आप वहां से चले गए। और वो देवानंद पंडित जो इतना दुष्ट था, भागवत का प्रवचन करता था लेकिन भक्ति की श्रेष्ठता की बात नहीं करता था, कभी योग की बात कहता, कभी ज्ञान की बात करता, कभी कर्म की बात करता, लेकिन भक्ति के बारे में नहीं प्रवचन देता था वो। और अंत में वास्तव में हुआ ये कि देवानंद पंडित ने चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद बक्रेश्वर पंडित की सेवा की बहुत। जब वो कीर्तन करते हुए नृत्य करते थे तो अन्य लोगों से उनको सुरक्षित रखा, जब भी वो इधर उधर गिर जाते उनको पकड़ लेते, और अन्य कई तरीकों से उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की। इसलिए महाप्रभु की कृपा देवानंद पंडित के ऊपर हुई और महाप्रभु ने स्वयं देवानंद पंडित को बहुत डांटा और फिर देवानंद पंडित वैष्णव बन गए। आज भी एक देवानंद पंडित गौड़ीय मठ है मायापुर से, जो गंगा जी के उस पार है, ये कुलिया गांव में। तो इस तरह महाप्रभु बहुत ही दुखी होते थे जब वो देखते थे कि कोई भक्ति के बारे में नहीं कह रहा है, और खास करके जब वो कोई भागवत पढ़ रहे हैं और भक्ति के बारे में नहीं कह रहे हैं तो ये तो और भी बड़ा अपराध हो जाता है। लेकिन गदाधर पंडित जैसे वैष्णव से जब वो भागवत सुनते तो इतने प्रसन्न हो जाते कि बार बार सुनते। वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि एक बार जब गदाधर पंडित श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु से ने गदाधर पंडित से प्रहलाद महाराज की कथा और ध्रुव महाराज की कथा सैकड़ों बार सुनी। हम जब एक बार सुन लेते हैं किसी कथा को और एक साल बाद भी हो, छह महीने बाद भी हो, उसी कथा को पुनः सुनते हैं तो मन में क्या विचार आता है कि अरे मैंने सुना है, मैं कुछ नई चीज सुनना चाहता हूं, ऐसे मन में विचार आता है ना। लेकिन महाप्रभु ने ऐसे नहीं सोचा। वैसे भी भगवान की हर लीला, भगवान के भक्तों की हर लीला भगवान की तरह ही नित्य नवनवायमान होती है, हमेशा ताजी होती है, नवीन होती है। तो महाप्रभु जानते थे कि ये सारी लीलाएं दिव्य हैं, तो सैकड़ों बार उन्होंने इन्हीं लीलाओं को बार बार सुना। जब समाप्त हो गई उनसे लीला तो कहा फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, सैकड़ों बार ऐसे सुनते गए, क्योंकि इसमें भक्ति का सार हम पा सकते हैं। और गदाधर पंडित बड़े भक्ति भाव से कह रहे थे, भक्ति के सिद्धांत का स्पष्टीकरण कर रहे थे। तो इसलिए हमें भी जानना चाहिए हमारे जीवन में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान परम सत्य श्री कृष्ण है, वो एक परम दिव्य सच्चिदानंद रूपी व्यक्ति है, और उन्हीं की अहित की अप्रतिहता सेवा करना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और जब उनके चरणों के प्रति ऐसी श्रद्धा और प्रेम जागृत हो जाएगी हमारे हृदय में, हमारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो एक 5-10 मिनट कोई प्रश्न हो आपके तो उनके बारे में हम उनके उत्तर हम दे सकते हैं। माइक है क्या यहाँ पर? इतने सारे हैं। अच्छा ठीक है, माइक यहाँ तक दीजिएगा। प्रश्न यह ये है कि जप करते समय हमारी भावना या चेतना कैसी होनी चाहिए? और मुझसे पूछा है प्रश्न कि आप जब जप करते हैं तो आपकी भावना क्या होती है? दोनों बातें पूछी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ऐसे जप करना चाहिए, अर्थात ऐसे भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। तो माँ को पुकारता है तो निस्सहाय भाव से पुकारता है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, कह ही देता हूं। एक बार एक बच्चा पलंग पे सोया हुआ था, छोटा सा था, और माँ रसोई घर में कुछ काम कर रही थी। तो बच्चा पलंग से गिर पड़ा जमीन पे, धड़ कर आवाज आ गई और जोर जोर से रोने लग गया बच्चा माँ के लिए। तो रसोई घर का काम सब कुछ छोड़ के तुरंत माँ वहाँ पहुँच गई, बच्चे को उठाया, बच्चे को सांत्वना दी और चुप करने के लिए एक मिठाई भी दे दी। अब मिठाई ले ली तो बच्चा चुप हो गया खुश होकर। फिर माँ वापस चली गई, बच्चे ने मिठाई तो खा ली लेकिन बच्चे की बुद्धि चलने लगी। मैं रोया और माँ ने मुझे मिठाई दे दी, मुझे और मिठाई खाना है। तो क्या करना चाहिए? रोना चाहिए। तो फिर से थोड़ी देर बाद जोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार माँ आई नहीं। बच्चे को गुस्सा आया, अरे एक बार रोए फिर से नहीं आए, और रोए दो बार तीन बार, अंत में माँ आई, आती आ रहे हो आ रहे हो, आई। फिर बच्चे ने गुस्से होकर कहा, इतनी बार मैं रोया क्यों नहीं आई? पहली बार जब मैं रोया था तो एकदम से आ गई। तो माँ ने उत्तर दिया कि पहली बार जब रोए थे तो मेरे लिए रोए थे इसलिए मैं आ गई, दूसरी बार जब रोए तो संदेश के लिए रोए इसलिए मैं आराम से आ गई। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, तो कृष्ण शीघ्र ही चले आएंगे। लेकिन हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं लेकिन किसी संदेश के लिए, भगवान हमें ये दीजिए, संसार की ये वस्तु प्रदान कीजिए, तो फिर भगवान कहेंगे जरा आराम से आएंगे, दूसरी जगह भी होकर आएंगे, बहुत से भक्त हैं वो भी राह देख रहे हैं, आराम से आएंगे। तो हाँ, जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं तो इस भावना से करनी चाहिए जैसे बच्चा निस्सहाय होकर अपनी माँ को पुकारता है, अर्थात भगवान और श्रीमती राधा रानी दोनों, हरे कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण, हम दोनों के चरणों में तीव्र याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि वो हमारा हृदय शुद्ध करें, उनके प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान करें और उनके चरणों की सेवा करने का एक अवसर प्रदान करें नित्य। ये भावना होनी चाहिए, एक प्रार्थनात्मक भावना होनी चाहिए। और जहां तक मेरा सवाल है, अब हम क्या बता सकते हैं, कोशिश तो कर भी रहे हैं हम भी, आशा करते हैं कभी भगवान प्रदान करेंगे कुछ ना कुछ, जब पाएंगे तो हम बताएंगे। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है?
हरे कृष्णा महाराज।
हरे कृष्णा
महाराज, आप बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बार बार ध्रुव ध्रुव महाराज का और प्रहलाद महाराज का लीला सुना करते थे, वो बेसिकली फिफ्थ कैंट और एट्थ कैंट है।
केवल रासलीला सुनने के लिए आतुर नहीं रहना, शुरुआत से अंत तक सुनना, पहले स्कंद से शुरू करके धीरे 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 से दशम स्कंद तक पहुंचना। दशम स्कंद को सुनने का अधिकार हमें चाहिए ना, वो अधिकार कैसे आएगा? पहले नौ स्कंद पढ़ के श्रवण करके फिर हम इस दशम स्कंद को सुनने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है?
हाँ, इन्हीं दो कैंटों में सुना है ऐसा
नहीं, ऐसे नहीं कि उन्हीं दो स्कंदों में, बस गदाधर पंडित कथा बोल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा और कहते रहो और कहो, ऐसे ही है बस। ठीक है, और किसका प्रश्न है? हाँ,
जैसे आप बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु मायावादी फिलॉसफी के बहुत ही ज्यादा सख्त खिलाफ थे, तो जैसे हम भी कुछ व्यक्तियों से मिलते हैं जिनको तो कुछ मायावादी फिलॉसफी जानते हैं, तो उनको जब हम कृष्ण भावना के बारे में बताते हैं तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं,
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के साथ किया वैसा मत कीजिए। प्रेम से दो बातें कहिए उनसे, थोड़ा सा प्रसाद खिलाइए उनको। वो ज्यादा कुछ मायावाद बात करने लगे ना तो मुंह में प्रसाद रख दीजिए ताकि वो बोलना बंद हो जाए, मुंह में प्रसाद आ जाए। ठीक है, उनसे सुनिए नहीं, उनका संग नहीं कीजिए, उनको संग देने का प्रयास कीजिए। वो सुनने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कभी ना कभी तो भगवान की कृपा होगी उन पर। ठीक है, हाँ जी, हाँ माइक।
हरे कृष्ण महाराज, हम सुनते हैं कि व्यक्ति और उसका छाया चित्र, फोटो एंड द पर्सन आर नॉट डिफरेंट,
ये केवल भगवान के लिए है, हमारे लिए नहीं।
और आचार्य एंड स्पिरिचुअल
जो जो गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके लिए और भगवान के लिए, साधारण दुनिया में ऐसे नहीं है ये।
सो हाउ टू बी ट्रीट देम एंड रिस्पेक्ट द फोटोज?
हाँ, तो जैसे आप वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे कि साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं, उसी प्रकार से आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पीछे प्रश्न है, पीछे दीजिएगा।
हरे कृष्ण महाराज।
हरे कृष्ण,
मेरा प्रश्न यह है कि जैसे भगवान ने कहा है पहली हिस्सा गुणमयी न माया दृत्य, ये जो मेरी माया है संसार, ये बहुत कठिन है, इसको पार करना कठिन है, तो इसको समझना बड़ा कठिन है, तो अभी हम इस संसार को भगवान की माया समझें तो हम मायावादी हो जाएंगे? संसार
नहीं,
माया है।
नहीं, हमने प्रवचन में हमने पहले बताया था ना कि मायावादी मतलब ये नहीं है सोचना कि ये सब माया है, मायावादी का मतलब है ये समझना कि भगवान का रूप माया का रूप है, अर्थात भगवान का रूप भी, भगवान का शरीर भी हमारे शरीर जैसा है जो कि जड़ पदार्थों से बना हुआ है, ये मायावाद सिद्धांत है। ठीक है, और कोई प्रश्न है यहाँ? हाँ, एक अंतिम प्रश्न, फिर बाद में अभी थोड़े पुरस्कार देने हैं भक्तों को। हरे कृष्ण।
मेरा सवाल है, हम जानते हैं सुनते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है, आत्मा का निवास हृदय में रहता है, तो फिर और एक और बात है कि आत्मा का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, आत्मा आध्यात्मिक है, तो क्योंकि शरीर तो एक भौतिक रूप है और इसकी भौतिक सीमाएं हैं, तो किस तरह से आत्मा जो कि आध्यात्मिक रूप है एक भौतिक सीमाओं से प्रतिबंधित रहती है?
प्रतिबंधित नहीं है, एक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ प्रतिबंधित है, परंतु आत्मा इस समय हृदय में बीज रूप में निवास कर रहा है। जब आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा तो फिर वो मूल रूप है वो भी प्रकट हो जाएगा। जैसे जैसे हृदय में भक्ति का विकास होता है वैसे वैसे आत्मा का स्वरूप भी धीरे धीरे से प्रकट होने लगता है। ठीक है, नहीं बंधित नहीं है। जिस तरह है आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है ना, और आते भी है वापस, जन्म के समय तो वापस उसी शरीर में तो नहीं, लेकिन जन्म के समय वो आत्मा का प्रवेश जब तक नहीं होता वो व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, और आत्मा जब शरीर छोड़ के चले जाता है तो उस समय व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो एक केवल स्थान है, आत्मा जाके शरीर में निवास करती है, जैसे हम एक घर में जाके निवास करते हैं, गाड़ी में जाके थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर उसको त्याग देते हैं, आत्मा और शरीर का यही संबंध है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय। आप सब यहाँ इतनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। और इतने अच्छे नए मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और आप सबकी भक्ति के कारण, आपकी सेवा के कारण ये सब चमत्कार यहाँ पूना शहर में हो रहे हैं, भक्तों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, बहुत प्रसन्नता की बात है। तो आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आपकी सेवा आगे बढ़ती रहे और सारे पुणे को आप कृष्णमय बनाएं। हरे कृष्ण। तो यहाँ राधे श्याम प्रभु के निर्देशन में आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं।